नंबर फोर्थ पॉइंट, अर्श हरकत भी करता है, अर्श का हरकत करना। और इसकी दलील हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से है, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि वो बयान फरमा रहे थे, इख्तज़ल अर्श ली मौती साद इब्ने माज़िन रदियल्लाहु अन्हु। सही मुस्लिम की रिवायत है 6346। कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लम से ये बात सुनी, जब साद बिन माज फौत हुए तो अर्श इलाही ने हरकत की। आप में से किसको हजरत साद की मौत का किस्सा पता? ग़ज़वे अहज़ाब के अंदर खंदक, जिसको आप कहते हैं, और अहज़ाब दोनों एक ही जंग के नाम है, सारे दुश्मन बाहर से आ गए थे। मदीना के दरवाजे पे उनको रोक लिया गया, खंदक खोदकर बचाव किया गया। हम इस्लाम के नाम पे मुसलमान नहीं जमा होते, हर एक 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनाकर बैठा, इसलिए कुफर गिर नहीं रहा। यानी एक साइड का पॉइंट बता रही हैं आपको, वो लोग जो आपस में भी कभी लड़ते लड़ाते हैं, वो इकट्ठे होकर किसी एक हुकूमत को गिरा सकते हैं। तो हम आज के मुसलमान फिरकों से और अपने अकीदों से और अकीदतों के मराकज से अलग होकर इकट्ठे होकर कुफर को नहीं गिरा सकते, हम जिन्स परस्ती के कवानीन को नहीं पीछे करा सकते। या फिर मेरे दिल का दर्द बोलने लगा है, आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी नहीं सुनी जाती? आप जिन मुल्कों में बैठे हैं या मेजोरिटी को मानते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर जगह है, रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे कुछ ना कुछ मरवत मौजूद है। आप सबने मिलकर आज तक कहां पूरे हौसलों में अपने बच्चों के लिए कवानीन पास करवाए? कल तक वो 7वीं 8वीं क्लास में जो जिनसी तालीम देते थे, आप में जो लोग इधर पढ़े पढ़े हैं उनको पता है कि 7वीं 8वीं क्लास में ये कुछ दिखाते थे, आपके इस मुल्क में आज बरने हागनों में दिखा रहे हैं। 3 साल के बच्चे को बॉडी के नाम पे सारा गंद पढ़ा देते हैं, और मोस्ट ओस्लो के मुसलमान के पूरे नॉर्वे के मुसलमान मिलकर पिटीशन नहीं दे सकते कि हमारे बच्चे ये नहीं करेंगे? आज हम लोगों के बहुत सारे सोर्सेस, टाइम, एफर्ट जाया कराते हैं सिर्फ अपने नाम पे। हमने भी वो मार्का मारना है जो दूसरे ने मारा, चले मैं मारना आता कि नहीं आता। हमने भी ये काम करना है चाहे मैं करना ही ना आता हूं, और जो कर है ना 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 वो अलग है, नहीं नहीं हम उनके साथ मिलके नहीं कर। हम तो एक ईद की नमाज नहीं इकट्ठे पढ़ सकते, हम तो एक मीना बाजार मिलके नहीं कर सकते, हमारे अपने मामले उनके अपने मामले, तो नमाजें कहां इकट्ठी होंगी? हर साल उमरे पे जाने का हमें शौक है, यूनिटी लेके आते हैं वहां, कितनी दुनिया के लोग आए होते हैं और एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और एक ही वक्त अरफात और मीना और मुजदलफा के सारे रिचुअल्स करते हैं। ये अलग बात है, जिनको अपना फिरका पसंद है वो वहां के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, वो बाद में अपनी अपनी पढ़ते हैं, वो कहते हैं ये नहीं और वो नहीं। और जरूरत इस बात की कि अपने आप को सही किया जाए, इत्तफाक में बरकत है। तो अब इधर क्या हुआ कि वो लोग सारे मिलकर मुसलमानों के खिलाफ आ गए। सलमान फारसी के मशवरे पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खुदवा दी, खुद भी खोदी। मदीना शहर के अंदर यहूद का एक कबीला या फिरका आज के दौर में कह लिए मौजूद था, जिसका नाम बनू कुरैज़ा था। बनू कुरैज़ा जो थे वो मदीना शहर के अंदर थे बस, बाकी सब बाहर थे। आप ये कह लें इन्होंने गदर किया था, धोखा किया। ज़ाहिर है मुसलमानों के मर्द तो सरहदों पे थे, औरतें और बच्चे घरों में थे, पीछे से इन्होंने कुछ ऐसा मामला किया कि जाकर मुसलमानों को नुकसान देने की कोशिश की। साद बिन माज का जिक्र चुके हो रहा है, तो उनको गज़वे खंदक में एक तीर लगा था, तो जिससे इनका खून जारी हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे गज़वे में और उधर, तो हजरत साद ने उस वक्त दुआ की थी कि अल्लाह मुझे मौत ना देना जब तक मैं बनू कुरैज़ा का इंजाम ना देख लूं। अल्लाह की रहमत से इनका वो जख्म जो था ना, उसका खून रुक गया, अपनी जबान में कहले जम गया, कुछ उस पर मट्टी कुछ लगा दिया होगा। उसके बाद गज़वे खंदक पूरी हुई, 1 महीने का महासरा था। अल्लाह के नबी अभी तैयारियां करके के चलो एक महाज पूरा हुआ, फारिग हुए, तो फरिश्ता आ गया, जिब्राइल आपने क्यों हथियार उतार दिए, अभी फरिश्तों ने तो नहीं उतारे? इशारा था चलिए बनू कुरैज़ा की तरफ, माजरत के साथ। 1 महीने की जान लेने वाली सर्दी, गज़वा खंदक, 1 महीने का मुहासरा, आसाब शिकन। पूरे कुरान में किसी और जंग के लिए कुरान ने यह नहीं कहा कि वह जुलजिलु जिलजालन शदीदा, और यह नहीं कहा कि वह कुलूबुल अदल हनाजिर, कलेजे हलक में आए थे, खौफ भी दहशत भी। और अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा घर में आए हैं और हथियार उतारने लगे हैं, तो कहा आपने क्यों उतार दिए, फरिश्तों ने तो नहीं उतारे? फरिश्तों ने नहीं उतारे से क्या मुराद है? आपको अभी बनू कुरैज़ा के साथ जाके लड़ना है। जरा सा रुकिए इस पे, मैं अपने ऊपर और आप अपने ऊपर लीजिए। 2 घंटे का सेशन है हमारा टोटल जो इस वक्त का। इस सेशन के बाद आपको मैं कहूँ कि चले जरा बैठे ना, कि 1 घंटा और ना पढ़ लें, मुरवतन बैठ जाएं, या दिल की क्या कैफियत होगी? हम कहते थे हम थक गए, हमने एक दिन मीना बाजार किया ना, हम थक गए, हम बिजी रहते हैं। मसरत के साथ साहबा के अंदर ये नहीं था, और आज भी उनमें नहीं है अलहमदुल्ला, जिनको मकसद प्यारा है। वेले दी गल ते वेले दी टक्कर, नमाज वक्त की बाकी कजा है। जिस वक्त जिस काम के करने का वक्त होता है वो करना है। अल्लाह के नबी और साहबा ने बिल्कुल डिली डाली नहीं की हमारे 98% प्रोजेक्ट के फ्लॉप होने की, और हमारी इसलाह ना होने की वजह क्या कि हम वक्त पे एक्शन नहीं लेते। रात गई तो बात गई, बाद में क्या फायदा होना है आपको उस बात से? और हम लोगों की सुनते बड़ी बात है, इसलिए कि जमहूरियत बड़ी हमारी दुनिया में। अल्लाह के नबी ने एक कॉल दी कि हम बनू कुरैज़ा की तरफ जाएंगे। साहबा में तो शायद वो नो वाला कोई उनसर ही नहीं था, तरबियत ने मसख कर दिया। 13 साल में जिसको कहते हैं दबा दबा के अना को तो नचोड़ ही दिया नबी ने। उस्ताद का काम ये होता है कि अना को निकाल दे। जो लीडर अना नहीं निकाल सकता वो ज्यादा देर लीडर भी नहीं रहता, लोग उसी के खिलाफ बगावत करके एजिटेशन करके उसको उतार भी देते हैं। हजरत साद बिन मास के ताल्लुकात थे बनू कुरैज़ा से। अब जब उनके साथ मामला हुआ तो उनसे पूछा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि साद बिन मास को बुलाएं, जो हमारे हक में वो कह देंगे ना मान लेंगे। उनका ख्याल कहता यहूद का कि हम इनसे दोस्ती मोहब्बत के नाम पे कुछ सहूलतें ले लेंगे। आज हम भी अंदर खाते बातें कर लेते हैं ना दो लोगों में ही, कि आपस में कर लिया, हमें ठीक है तो सबको मना लेंगे, नहीं है तो नहीं है। खैर, उन्होंने कहा जो साथ कहेंगे ठीक है। उनका अंदाज देखिए कितना गलत साबित हुआ। साथ ने वहां जाकर वो फैसला दिया जिस पे अल्लाह के नबी ने कहा कि आसमानों पे अल्लाह का वही फैसला था जो साथ ने कहा। अपने हम ख्याल दोस्तों और अपनी मर्जी मनाने वालों को नहीं सपोर्ट किया, किसको किया? अल्लाह को किया। और फिर वही उनका अंजाम हुआ। वो जो हुआ उसको इस पर लेके नहीं जा रही, आपकी सोच बदल जाएगी। किस्सा मुख्तसर, वो कैफरे किरदार को पहुंचे तो देखा कि मस्जिद नबी में खून की धारियां चल रही हैं, और देखा तो वो हजरत साद के हुजरे में से निकल रही थी। और साद का जब खून निकला तो अल्लाह के नबी सल्लम ने जो लफ्ज कहे वो इस वक्त आपके सामने है। आपने फरमाया कि साद की जब जान गई तो अर्श इलाही हरकत में आ गया। कोई कहता है खुशी में झूम गया कि साद आने लगे हैं। आपने लिए दुआ कीजिए कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो जमीन और आसमान में खुशियां मनाई जा रही हो। जमीन वालों की खुशी ये हो कि इस दुनिया में जिस आलम थे वहां से अच्छे हो गए, और आसमानों पे हमारे आने पे ये खुशियां हो कि इस बंदे का बड़ी देर से इंतजार था। तो अगर साद के आने की खुशी में अर्श हिल सकता है तो आपके मेरे जाने पे क्या होगा, ये आप और मैं जाने। जिंदगी वो गुजारी है कि जिसके बाद रोना ना आए अपने ऊपर। हमारी जिंदगी ऐसी हैं कि जिसके ऊपर आप अल्लाह की पनाह में रखिए अपने आप को। आप देखिए कि ये चीजें, क्या आपने कभी सोचा था कि अर्श के टॉपिक में आप ये सब कुछ भी सीखेंगे? आप 10 किताबें पढ़ लें, आप कभी ऑन साइट बैठकर एक उस्ताद के साथ क्लास ऑनलाइन पे भी बैठे हैं तो आप एज अ स्टूडेंट बैठे बगैर ये नहीं सीख सकते। चलते फिरते में ये काम नहीं होते, फिर भी अगर हो जाए तो इसको बाद में सुकून से बैठकर सुने। इस वक्त मेरे घर से कितने लोग सुन रहे हैं, मैं आप सबको कहूंगी बैठ के सुनिए। जरूरत इस बात की कि हम अपनी इन चीजों को महसूस करें। अपने लिए दिन का कुछ हिस्सा फोकस्ड होकर उस काम को ले लीजिए, और दुआ करिए मेरे लिए भी जो मैंने सोचा अल्लाह मुझसे करा ले। दुनिया काम की जगह, आखिरत आराम की जगह। हथेली के छाले बनाने वाले, याद रखिए दुनिया में याद नहीं किए जाते। अभी तो आपको दुआएं मिल दी अर्शियों के फरिश्तों की, तो दुआ कीजिए अल्लाह इल्म का ये ताल्लुक हफ्ते के किसी एक दिन भी ना तोड़े। 7 दिन हफ्ते के आप बैठे, 1 घंटा ही क्यों ना आपका सेशन हो, इस इल्म को आम कीजिए। ये है आज के दौर का महाज, जिसको आपने मैंने अगर सर कर लिया तो उसके बाद हमारी जिंदगियों में खूबसूरतियां आ जाएंगी। बोलिए जरा, पहली चीज अर्श के बारे में क्या पढ़ी? अर्श पानी पर था, शाबाश। दूसरी चीज अर्श जन्नतुल फिरदौस की उस जगह पे कि जहां से जन्नत की नहरें आती हैं। नेक्स्ट थिंग अर्श के पाए हैं, और नंबर 4 अर्श हिलता भी है। आगे चलते हैं, नंबर 5 लौहे महफूज अर्श पर है। अल्लाह अकबर कबीरा, नाम तो आपने भी सुना हुआ है ना, लौहे महफूज का क्या है कैसे है? देखिएगा हदीस आपके लिए जो मौजूद है, ये सही बुखारी की रिवायत है 7553, और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लम्मा कदल्लाहुल खल्का कतब फी किताब ही फहुवा इंदहु फौकल अर्श, और क्या लिखा, इन रहमती गलबत गदबी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हमें अरबी से मोहब्बत दे दे। जब अल्लाह ताला सब मखलूक को पैदा कर चुका, तो इसने अपनी किताब यानी लौहे महफूज में, जो इसी के पास अर्श पर है, ये लिखा, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। कितनों को बात समझ आ गई है? सूरत अलनाम की आयत है, कतब अला नफ्स ही रहमा, दो दफा ये आयत है कुरान में। अल्लाह ने अपने नफ्स पर ये लिख लिया, क्या, कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब होगी। तभी तो मैं और आप जिंदा, तभी तो आप और मैं इतने अच्छे खाने खाते हैं, इतने अच्छे घरों में रहते हैं, इतनी अच्छी गाड़ियों में सफर करते हैं, इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं। हमारे ऊपर आसमान नहीं गिरता, हमारे ऊपर जमीन नहीं टूटती, क्योंकि अल्लाह की रहमत है। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला का ये फरमान कहाँ है? लौहे महफूज में। तो लौहे महफूज किधर है? अर्श पर। लौहे महफूज क्या आपको पता? आजकल गवर्नमेंट के इश्यूज चल रहे हैं ना, कौन किधर जाएगा, सब कोई पता है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट की जो चेंजेस हैं, मुख्तलिफ तरह के तबसरा निगार होते हैं, आप बताइए आगे क्या होगा जी। कोई हिजब इख्तलाफ के हक में होता है, कोई इकतदार के, कुछ उनके चैनल है, कुछ उनके, यानी कहना चाहिए कि नाकाबिले बर्दाश्त चीज मेरी आंखों से गुजरी, और वो क्या थी, ज्योतिषी को बुलाकर, पामिस्ट फॉर्चून टेलर को टीवी की स्क्रीन पे शो में बुलाकर पूछा जा रहा है, आप बताइए किसके सितारे क्या कहते हैं? इमरान खान दोबारा आ जाएगा, नवाज शरीफ आएगा, फुला आएगा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इस चैनल को तो हैक कर दीजिए, दिल नहीं जलता। अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने हाथ दिखाया उसकी 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं। सितारों का असर मालूम किया आपने? हदीस दी कि कल बारिश हुई या होगी, और उसकी वजह से कुछ मोमिन होंगे, कुछ काफिर। का काफिर कौन होंगे? का जो ये कहेंगे इन सितारों के असर से बारिश हुई, और मोमिन होंगे जो कहेंगे अल्लाह के हुक्म से हुआ। मैं ये नुकता क्यों उठा रही हूं? आप इसको आम कीजिए, इसका छोटा सा क्लिप बनाकर 2 सेकंड का या 1 मिनट का डाल दीजिए। क्या हम अब इतने गए गुजरे मुसलमान, ये जो फॉर्चून टेलिंग, किस्मत का हाल, पामिस्ट्री, ये तो इजमाए उम्मत है। आपके मुल्क के चैनल कैसे चल सकते हैं जहां आप लोगों के हाथ देखते और दिखाते हैं, लेकिन जहां जिस्म दिखाए जाते हैं वहां हाथ भी दिखा लिए जाए तो क्या बात है? जहां अदाएं दिखाई जाती हैं वहां सितारों से हाल पूछ लिया जाए तो क्या? इस वक्त रोने की जरूरत है, इस वक्त जरूरत है ना उम्मत को, तो इसकी जरूरत है, इल्म की जरूरत है, इस किताब से ताल्लुक की जरूरत है। और इसमें आज देखिए कितने हैं, शादी हॉल अगर रात किसी सैटरडे किसी शादी में होंगे तो कितने लोग होते हैं वहां, कितने शौक और जोश से, और कितने खुद को लाजिम और मलजूम समझ कर जाते हैं कि मैं ना गई तो शादी नहीं होनी। कभी सोचा आपने? तो आज फजर में पूछिए काजी इमाम साहब से, फजर में कितने नमाजी थे? आप अभी जोहर होगी तो पूछिएगा इमाम साहब से कितने नमाजी आते हैं, इल्म की महफिलों में तो आप खुद ही माशाल्लाह हैं। यानी आप देखिए, वो जो ना खूब था वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। फिर आप कहते हैं कि अल्लाह की रहमत किधर है जी? सबकत रहमती गदबी फहुवा इंद फौकल अर्श, ये हदीस के लफ्ज याद कर लीजिएगा इसमें से। तो अल्लाह की रहमतों को बुलाने वाले काम करेंगे तो रहमत आएगी, और अगर अल्लाह की रहमतों को भगाने वाले काम करेंगे तो फिर रहमत भाग भी जाएगी। आगे देखिए छठा पॉइंट अर्श से मुतल्लिक, सिक्स्थ फैक्ट यानी रियलिटी, हकीकत क्या है आयत देखिएगा, कि अर्श को फरिश्ते उठाए हुए कैसे हैं। सूरत गाफिर की आयत 7 है, अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श व मन हौलहू युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ। अर्श उठाने वाले और इसके आसपास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं, और ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हुए कहते हैं, ये देखिए, अर्श के नाते से अर्श को उठाने लिए फरिश्तों की दुआ भी मिल गई आपको। क्या दुआ है? हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस इन्हें बख्श दे जो तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें, और तू इन्हें दोजख के अजाब से बचा ले। फरिश्तों की दुआएं। तो क्या पता चला कि फरिश्तों ने अर्श को उठाया हुआ है? और याद रखिए कि फरिश्तों ने अर्श को जो उठाया हुआ है, इनकी डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है हदीस में। इसके ऊपर नोट कीजिएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मुझसे एक अंसारी सहाबी ने बयान किया, वो रात को रसूलुल्लाह के पास बैठे थे, इतने में एक सितारा टूटा। गर्मियों की रात में आसमान को देखें तो वहां से सितारे टूटते हैं ना, और देहातों में तो खास तौर पे ज्यादा दिखता है चूंकि वहां लाइट्स कम होती हैं। तो खैर, सितारा टूटा और बहुत चमका। आपने फरमाया, तुम इस चीज को जाहिलियत के जमाने में क्या कहते थे? उन्होंने कहा, हम जाहिलियत के जमाने में कहते थे कि आज की रात कोई बड़ा शख्स पैदा हुआ है या मरा है, यानी कोई खास वाकया हो गया है जिसकी वजह से ये हुआ। तो आपने फरमाया, फइन्नहा ला युरमा बिहा लिमौति अहदिन वला लिहयातिही वलाकिन रब्बुना तबारक व तआला इस्मुहु इज़ा क़दा अमरन सब्बह हमलतुल अर्शी सुम्मा सब्बहा अहलुस समाई लज़ीना यलूनहुम हत्ता यब्लुगल तस्बीहु अहला हाज़िहिस समाई दुनिया सुम्मा क़ाला लज़ीना यलूना हमलतल अर्शी माज़ा क़ाला रब्बुकुम फयुख़बिरूनहुम माज़ा क़ाला क़ाला फयस्तख़बिरु बादु अहलिस समावाति बादन हत्ता यब्लुगल ख़ब्रु हाज़िहिस समाई दुनिया फतख़तफ़ुल जिन्नुस सामा फयक्ज़िफून इला औलियाइहिम व यरमून बिही फमा जाऊ बिही अला वजहिह फहुवा हक्कुम वलाकिन्नहुम यक़रिफून फीही व यज़ीदून। अब सुनिए इसका उर्दू तर्जमा और इंजॉय करेंगे। सितारा किसी के मरने या पैदा होने की वजह से नहीं टूटता, लेकिन हमारा मालिक जल्ला जलालहू जब कुछ हुक्म देता है तो अर्श के उठाने वाले फरिश्ते तस्बीह कहते हैं, फिर इनकी आवाज सुनकर आसमान के फरिश्ते तस्बीह कहते हैं, यहाँ तक कि तस्बीह की नौबत आसमाने दुनिया तक पहुंचती है। फिर जो वो अर्श उठाने वाले फरिश्तों से करीब हैं, वो इनसे पूछते हैं, क्या हुक्म दिया तुम्हारे मालिक ने? वो बयान करते हैं, इसी तरह आसमान वाले एक दूसरे से दरियाफ्त करते हैं, यहाँ तक कि वो खबर इस दुनिया के आसमान वालों तक आती है। इनसे वो खबर जिन उड़ा लेते हैं और आकर अपने दोस्तों को बताते हैं। यानी जिन्नात जो हैं वो फरिश्तों की बातें सुनते हैं और होते होते वो नीचे आती हैं चीजें। फरिश्ते जब इन जिन्नों को देखते हैं तो इन तारों से मारते हैं, तो ये तारे इनके कोड़े हैं। फिर जो खबर जिन लाते हैं, अगर वो इतनी ही कहें तो सच है, लेकिन वो झूठ मिलाते हैं और इसमें और ज्यादा करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये समझ आई आपको सितारा टूटना क्या है? वो जिन की डेड बॉडी होती है, या वो ऐसे लोगों को ऊपर से थपेड़े पड़ रहे होते हैं। फिर एक और रिवायत लीजिए, अबू दाऊद की रिवायत है 4727। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे इजाजत मिली है कि मैं अर्श के उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते का हाल बयान करूं। इमेजिन कीजिए, जो अर्श को उठाए हुए हैं, इनके कान की लो से, ये कान की लो क्या थी, ये जहां बाली पहनते हैं नीचे वाली चीज, यहां से ये मोंडा, ये शोल्डर, ये देखिए कितना है मेरा, इधर से लेके शायद मे बी 6 इंच होगा। इसके कान की लो से इसके मोंढे तक का फासला 700 बरस की मुसाफत है। अब वो 700 बरस क्या है, कैसे हैं, कितने हैं, किसके हैं, ये आपको मुझे नहीं पता। तो क्या पता चला? इस सारी बात का खुलासा करते हैं कि अर्श के उठाने वाले जो फरिश्ते हैं, उनका वजन, उनका हुजम सब कुछ है, और फरिश्ते हैं तभी तो ये सारे मामलात हो रहे हैं ना उसके अंदर। और इसी तरह से याद रखिए कि जो इंसानों की किस्में है ना, रसूलों की किस्में, अंबिया की किस्में, किताबों की किस्में, फरिश्तों की भी किस्में। और फरिश्तों में से मुख्तलिफ फरिश्तों के अंदर से बड़े इज्जत वाले और मुकाम वाले फरिश्ते वो हैं जो अर्श को उठाते हैं। सहाबा में आपको बताया, जैसे अशरे मुबशरा सहाबे बदर हैं, बदर की जंग लड़ने वाले। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक और दलील इसी की लीजिए कि फरिश्ते अर्श को उठाने वाले हैं। तो ये ऐसे फरिश्ते हैं कि जिनका तस्करा करके हम सुबह शाम की दुआ एक मांगते हैं। अगर आप सुनना चाहें तो सुन लीजिए। हामिली ने अर्श के मुकर्रब फरिश्तों को गवाह बनाकर सुबह शाम की एक दुआ जो अल्लाह के नबी सल्लम ने सिखाई, अबू दाऊद की रिवायत है 5067, अबू हुरैरा इसके रावी हैं। कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के रसूल मुझे कुछ ऐसे कलेमात बताइए जिन्हें मैं जब सुबह करूं और जब शाम करूं तो कह लिया करूं, यानी सुबह और शाम को पढ़ लिया करूं। आपने फरमाया कहो। आप भी मेरे साथ दोहराएंगे, मैं बोलती हूँ, आप मेरे साथ दोहरा लीजिए। अल्लाहुम्मा फातिरस समावाती वल अर्दी आलिमल गैबी वश्शहादती रब्बा कुल्ली शैइन व मलीकहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता आऊज़ु बिका मिन शर्री नफ्सी व शर्रि शैतानी व शिर्के। ए अल्लाह, आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और मौजूद हर चीज के जानने वाले, हर चीज के पालनहार और मालिक, मैं गवाही देता हूं कि तेरे सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं है। मैं तेरी जात के जरिए अपने नफ्स के शर से, शैतान के शर से और इसके शिर्क से पनाह मांगता हूँ। आपने फरमाया जब सुबह करो और जब शाम करो और जब सोने चलो तब इस दुआ को पढ़ लिया करो। अच्छी लगी आपको ये दुआ? याद करेंगे आप इसको? दोहराऊं एक बार? हम एक ही साथ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्द आलिमल गैबी वश्शहादती रब्बा कुल्ली शैयिम व मलीकहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता आऊज़ु बिका मिन शर्री नफ्सी व शर्रि शैतानी व शिर्की। सेवेंथ पॉइंट क्या है? कयामत के दिन अल्लाह का अर्श मैदाने महशर में होगा। अल्लाह अकबर। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला का अर्श मैदाने महशर में होगा, ये कैसे होगा? सही बुखारी की एक तवील रिवायत है। क़यामत के दिन जब सब लोग मुख्तलिफ अंबिया के पास सिफारिश ढूंढने के लिए जाएंगे तो सबसे आखिर में मायूस होकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और सिफारिश के लिए दरख्वास्त करेंगे। तो आप इन्हें लेकर अर्श की तरफ चलेंगे। और जिसका अंदाज क्या है? ये रिवायत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से सही बुखारी में 4712 नंबर की रिवायत है। आप कहते हैं फन तलिको, फिर मैं चलूंगा, फाती फिर मैं आऊंगा, तख्त अल अर्शी अर्श के नीचे, फिर क्या करूंगा? फाकाऊ साजिदल्ली रब्बी अज़्ज़ वजल, फिर मैं अपने रब्बे अज़्ज़ वजल के सामने सजदा रेस हो जाऊंगा। सुम्मा यफ्तहुल्लाहु अलैया मिन महामिदिही, फिर अल्लाह खोल देगा मेरे ऊपर, यानी मेरा सीना खोल देगा और मेरी जुबान पे तारीफी कलेमात जारी हो जाएंगे। वह हुस्न सनाई अलै शैयन लम यफ्तहु अला अहदिन कबली। सुम्मा युकालु या मुहम्मद इरफा रासक सल तोता वशफा तुशफा फ़अरफ़ाउ रासी फ़अकूलु उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी। फ़युकालु या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदखिल मिन उम्मती का मल्ला हिसाब अलैहिम मिन अल्बाबिल अयमनी मिन अब्वाबिल जन्ना वहुम शुरका उन्नासी फीमा सवा जालिका मिन अल अब्वाब। सुम्मा काल वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नमा बैनल मिस्रा अयना मिन मसारिल जन्नती कमा बैना मक्कता व हिमयर औ कमा बैना मक्कता व बुसरा। ये तो मैंने अपना शौक पूरा किया और अब आप सुनिए, उर्दू तर्जमा सुनिए इस हदीस का। आपने फरमाया इस वक्त मैं अर्श के नीचे जाकर अपने रब के हजूर सजदा रेस हो जाऊंगा। अल्लाह ताला अपनी तारीफ और खूबी की वो बातें मेरे दिल पर मुनकशिफ करेगा, यानी कश्यप होगा आपको, जिनका मुझसे पहले किसी पर इंकशाफ नहीं हुआ होगा। चुनाचे मैं इसी तरीके के मुताबिक हमदो सना बजा लाऊंगा। तो फिर हुक्म होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाइए, मांगिए, जो मांगेंगे वो दिया जाएगा। तुम जिसकी सिफारिश करोगे हम सुनेंगे। मैं सर उठाकर अर्ज करूंगा, परवरदिगार मेरी उम्मत पर रहम फरमा, मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत पर रहमत फरमा, मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत पर रहम फरमा। फरमाने इलाही होगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत के वो लोग जिनका हिसाब नहीं होगा, इन्हें जन्नत के दाएं दरवाजे से दाखिल करो। ये देखिए अब उम्मत मुस्लिमा का टौर और इनकी इज्जत। क्या बरात का कोई इस्तकबाल करता है घोड़े पे बिठाकर, जो आपका होने वाला है वहां इकराम इंशाल्लाह। अल्लाह हमें उसके तकाजे पूरे करने वाला बना दे, डिजर्विंग तो बन जाए। फिर आपने फरमाई, जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जन्नत के दोनों दरवाजों का दरमियानी फासला मक्का और खिमजर, या मक्का और बुसरा, ये शहर थे जिनके नाम इधर लिए गए हैं, यानी दो शहरों में से, मक्का से कह लीजिए कि मक्का से खिमजर या मक्का से बुसरा, यानी एक बड़ा अच्छा डिस्टेंस है, इसके बीच का होगा, यानी जन्नत के दरवाजों की चौखट। ये जो चुगाट, वो जो पीछे दरवाजा है, मेरा ख्याल है ये तकरीबन 1 मीटर चौड़ा होगा। आमतौर पर इतना ही होता है ना, बाहर जहां से मेन डोर है अगर सारा भी खोल दें तो 3-4 मीटर होगा। जन्नत के दरवाजों की चौड़ाई मक्का से चलना शुरू करे तो खिमजर, या मक्का से बुसरा तक चढ़े, सिर्फ इतनी चौड़ाई है तो जन्नत कितनी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह सुबहान तआला बंदे से कितना प्यार करते हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर हमने अल्लाह का असल रूप दिखाया हो और देखा, और वो कुरान पढ़ के होता है, इसके बगैर नहीं दिखता, तो समझ लीजिए कि फिर उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो याद रखिए कि ये अर्श के बारे में हमने 7 बातें पढ़ी हैं, लेकिन कुछ मजीद बातें जिस पे इंशाल्लाह अर्श की डिस्क्रिप्शन को पूरा करने के बाद फिर हम कयामत के जलजले पे जाएंगे और देखेंगे कि कयामत के दिन इस अर्श की क्यों हमें जरूरत पड़नी है। कुछ मुतकल्लमीन क्या कहते हैं कि जी अर्श आसमान है, यानी ये जो आपके मेरे ऊपर आसमान देख रहे हैं, वो कहते हैं जी यही अर्श है। भी क्यों, आपको इसमें क्या मसाल है? और साथ ही वो कहते हैं कि ये किनारों से गोल है और तमाम आलम को हर तरफ से घेरे हुए है। कोई इसको फलक अतलस भी कहते हैं, कोई फलक तासे भी कहते हैं, ये उनकी अपनी अपनी जुबान में ये मुख्तलिफ चीजें कही गई हैं, और ये राय दुरुस्त नहीं है। आप और मैं ऐसी बातें नहीं करने के हकदार, ठीक है? देखिए हमने देखा अर्श के पाए हैं, फरिश्तों ने उठाया है, तो नाउज़ुबिल्लाह क्या आसमान के पाए हैं? और फरिश्तों ने किसको उठाया हुआ है? अल्लाह के नबी उठेंगे तो मूसा वहां खड़े होंगे, पाया पकड़े, तो ये सारी बातें रद्द करती हैं। अभी हमने जो 7 पॉइंट्स कुरान हदीस से ले लिए, ये रद्द करती हैं, ऐसी चीज नहीं है। एक और क्वेश्चन, यानी ये नेगेटिव क्वेश्चन आपको सिखा रही हूँ, कुछ लोग कहते हैं ऐसे, तो आपको नेगेटिव बताओ, क्या अर्श से मुराद बादशाहत है? कई कुरानी तर्जुमों में ये गलती हुई हुई है। आपको याद है सूरत अल अराफ की मैंने आयत जब पढ़ी तो मैंने क्या तर्जुमा किया? वो अर्श पे मुस्तवी है। कोई कहता है जलदवाए बादशाहत, कोई कहता है सल्तनत, कोई कुछ। इस पे बड़े बड़े मशहूर लोगों को गलती लगी, मैं नाम नहीं लेती। आज हर घर में शायद वो तफसीरें होंगी, लेकिन वहां मुगलत है, बस अल्लाह माफ कर देगा, इट्स ओके। तो क्या अर्श से मुराद बादशाहत है? हरगिज नहीं, नेवर। हम ये कह ही नहीं सकते। जो लोग अल्लाह के कलाम में तहरीफ करते हैं, यानी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं, वो ये कह सकते हैं। आप और मैं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह के अर्श को फरिश्तों ने उठा रखा है, सुन लिया ना? तो क्या अल्लाह की बादशाहत को फरिश्तों ने उठा रखा है? तुक बनता है। और इसकी बादशाहत क्या पानी पे है? और क्यामत के दिन मूसा जो अर्श के पाए पकड़े होंगे, तो क्या वो पानी के पाए पकड़े होंगे या अल्लाह की बादशाहत के पाए पकड़े होंगे? ये गलत है, तो इसका जवाब भी नो है। थर्ड, एक और ऑब्जेक्शन इस पे, क्या अर्श और कुर्सी दोनों एक ही चीज है? जैसे आपके इस रूम में अगर एक छोटा सा स्टेज बनाकर उस पर कुर्सी रखी जाए, तो स्टेज को अर्श कह लेंगे आप, और ऊपर कुर्सी, कैसे? तो जरा इसके बारे में भी जान लीजिए। कुरान पाक क्या कहता है? बकरा 255, वसीया कुर्सी युह समावाती वलर, उसकी कुर्सी आसमानों जमीन को मुहित है। अब कुर्सी से मुराद क्या अर्श है, या अर्श या कुर्सी अलग चीज है, क्या है? क्या सही बात? क्या कुर्सी अलग है, अर्श अलग है? इस पे इब्ने अब्बास का एक कॉल नोट करना चाहें तो कर लीजिए, कहते हैं अल कुर्सी मौदियुल कदमैन वल अर्शु ला यकदिरु अहदुन कदरुहु। कुर्सी अल्लाह के दो कदमों की जगह है और अर्श का तो कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो क्या पता चला, आपके मेरे लिए इतनी बात अभी काफी है कि कुर्सी बिल्कुल अलग है और अर्श बिल्कुल अलग चीज है। अगला क्वेश्चन जो आपके मेरे मौजूद को आगे लेके जाएगा, क्यामत के दिन अर्श की क्या कैफियत होगी? तो पीछे हम हदीस सुन चुके कि क्यामत के दिन अर्श इलाही मैदाने महशर में होगा और इसे फरिश्तों ने उठाया होगा, और इसकी दलील सूरत अल हाका आयत 17, वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया। उस रोज तेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठा रखा होगा, और यही वो दिन होगा जब कुछ खुशनसीब अहले ईमान हशर की गर्मियों से महफूज अर्श इलाही के साए में होंगे। अल्लाह मुझे आपको उसमें कर दे। क्या कयामत के दिन हमें इसकी जरूरत पड़नी है? क्या ये सब कुछ होगा तो मैदाने महशर में हमें जिस ठंडी छाओं की जरूरत है उसको अर्श कहते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस से वाजे पता है कि कयामत के दिन कोई साया नहीं सिवाय अल्लाह के अर्श का साया। तो मैदाने महशर में लोग नंगे पांव नंगे बदन होंगे। सोचिए जरा, मैदाने महशर में थोड़ी देर के लिए खुद को ले जाइए और वहां की ठंडी छाओं का नाम है, आप लिख ले अपने नोट्स में, मैदाने महशर में ठंडी छाओं अर्शे इलाही। क्यामत का दिन है, कायनात भर के लोग मैदाने महशर में जमा है, जिस्मों पर कपड़ा भी नहीं है, दूर दूर तक कोई सायादार जगह भी नजर नहीं आती, और सूरज है कि लोगों के बहुत ही करीब आ गया, पूरी कुव्वत से चमक रहा, इतनी शिद्दत की आग उसने कभी नहीं बरसाई, और गर्मी और पसीने से लोग बदहाल हैं। और हैरत यह है कि बाज लोग टखनों तक पसीने में डूबे होंगे, बाज घुटनों तक, बाज पहलुओं तक। सोचिए जरा, यानी कहां से कहां पे बात जाती है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने उस दिन कयामत का मंजर हमारे नबी की जुबान से ऐसे खुलवा दिया कि आप और मैं उसके बारे में तसव्वुर की निगाह से भी देख लें तो सब कुछ दिखेगा, और लोग बदहाल पसीनों में डूबे हुए घुटनों तक, बाज पहलुओं तक, कुछ को पसीने ने लगाम पहनाई हुई है। ऐसे परेशान कुन माहौल में लोग साए की तलाश में इर्द गिर्द देखते हैं तो कोई साया नजर नहीं आता। जहां भी नजर पड़ती है हर तरफ धूप गर्मी, और फिर नजर पड़ती है तल्ला रब्बुल अजीम अर्श के नीचे एक बड़ा खूबसूरत सा साया मुकर्रर करते हैं। कुछ लोग वहां बैठे हैं जिन पे अल्लाह की रहमत है, ना उन्हें क्यामत की सख्तियों की परवाह है और ना हिसाब किताब की, और लोग ऐसे लोगों को रश्क से देख रहे होंगे। आप तसव्वुर में लाइए कोई जगह, किसी जगह आम लोग धूप में जल रहे हैं और जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके सरों पे छतरियां हो, और आम लोग खड़े हैं और उनको बड़े नरम तख्त दिए जाएं या उनको सोफे दिए जाएं। कभी आप जहाज में बैठकर वीआईपी लाउंज वालों को झांके तो उनको फ्रेश जूस मिल रहा है और आपको भी पानी भी नहीं दिया गया। कितने खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिनको कयामत के इस दहशतनाक माहौल में कयामत की हौलनाकियों से बचने के लिए अर्शे इलाही का साया मिल जाए। और ऐसे ही लोगों के लिए भी शाफे महशर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबर दी है कि वो लोग कुछ खूबियों के मालिक होंगे जिनको ये साया दिया जाएगा। लेकिन आपके लिए मेरे लिए इस वक्त अभी जबकि हम जिंदा हैं, पहली बात दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरी बात देखिए कि अभी हमारे नामे अमाल खुले में, तो क्या आप और मैं उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे? आज वक्त है, उस दिन जाकर कुछ नहीं होगा। और ये भी याद रखिएगा कि अर्श इलाही के लिहाज से तीन गिरोहों में लोग जो मौजूद हैं कयामत के, कुछ असहाबे यमीन है, कुछ असहाबु शिमाल है, कुछ साबिकून अल अव्वलून साबिकून अस साबिकून है, जिनको साबिकून अल अव्वलून भी कहा गया। मैदाने महशर में ये ठंडी छांव उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने इस दुनिया में मेहनत की होगी। खुलासा कर देती हूँ आज की सारी बात का। दुनिया में जो अच्छा काम करेंगे क्यामत के दिन उसकी जजा या सजा पाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ कुछ करते फिरे और वहाँ आपके साथ कुछ और होने लग जाए, नेवर। दूसरी बात जो मुझे समझ आई है आज इस सारी चीज़ों को पढ़ने पढ़ाने के बाद, वो क्या है कि हम बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला की एक एक बात को गौर से सुनें और समझें और उस पर गौर व फिक्र करें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته